जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद नजदीकाओ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद
जय
अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
हरे
कृष्णा।
हरे
कृष्णा। तो कल हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे जो शिष्यगण हैं उनको सुना रहे थे, उनको क्लास ले रहे थे और उस क्लास में उनके शिष्यों ने कई प्रश्न पूछे थे। तो उनमें से एक था कि धातु का मतलब क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु धातु शब्द का अर्थ अपने सारे शिष्यों को बताने लगे और कहने लगे कि धातु यदि शरीर में नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, शरीर उसका सुंदर क्यों ना हो, तो यदि धातु नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है उस शरीर का। और वो शरीर फिर या तो जमीन में दफनाते हैं या आग से जलाते हैं। और फिर ऐसे ही महाप्रभु कई ऐसे प्रैक्टिकल चीजों को बताते हुए उन्होंने कहा कि जो पुत्र हम गोद में लेते हैं, बाप जिस पुत्र को गोद में लेता है, वही पुत्र बाप के मुंह में आग जलाता है, आग डालता है। इस प्रकार से महाप्रभु जो उनको व्याकरण सिखा रहे थे, और व्याकरण में ये शब्दों का जो मूल है, रूट है संस्कृत व्याकरण में, वो सीखा जाता है। तो लेकिन अभी ये महाप्रभु व्याख्या बिल्कुल दूसरी तरह से कर रहे थे और बीच बीच में कह रहे थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी व्याख्या का खंडन कर सकता है, उसमें गलती निकाल सकता है। और फिर धीरे धीरे सारे उस क्लास को कृष्ण भावना से पूरित कर देते हैं और वो कहते हैं कि भज कृष्ण बोलो कृष्ण, मतलब सारी चीजें कृष्ण भावना में ले आते हैं। कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के भजन करो, कृष्ण के बारे में सुनो, और फिर भगवान के चरण कमलों की महिमा वो बताते हैं। और फिर आखिरी में क्या कहते हैं महाप्रभु, कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में ये प्राण है तब तक आप क्या करो, प्रयास करो दिन रात कृष्ण के चरणों में भक्ति का विकास करने का प्रयास करो। क्योंकि ये शरीर फिर यदि खराब हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जो गा नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो लंबा बैठ नहीं सकता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, तो ऐसा शरीर खराब होने से पहले एक चीज करो, कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग या भक्ति विकसित करने का प्रयास करो। फिर महाप्रभु ने बहुत बड़ी विनम्रता प्रदर्शित की और महाप्रभु ने उनके शिष्यों के लिए बोला, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राणधान,
कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राणधान,
चरण धरिया बलि कृष्ण
देहमान।
तो इस प्रकार से यहाँ महाप्रभु ने सीमा ही लांग दी। महाप्रभु ने कहा कि हे शिष्यों, कि कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है और कृष्ण सबके धन और प्राण है, तो मैं आपके चरण कमलों को पकड़ता हूँ, मैं आपके चरणों को क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, और आप क्या करो, कृष्ण के इसमें मन लगाओ, कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाओ। तो महाप्रभु की यहाँ बहुत बड़ी विनम्रता प्रकट होती है और इससे ये भी सीखने को मिलता है कि भगवान की कितनी इच्छा है कि लोग उनकी भक्ति में तीव्रता से लगे। तो हमें ज्यादा इच्छा नहीं है भगवान की भक्ति करने की या उनका चिंतन करने की, जितना कृष्ण चाहते हैं हम उनका चिंतन करें, उनके चरणों की सेवा में लगे। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं आज से, दास भावे कहे प्रभु आपन महिमा, हैल प्रहर दुई तबु नहीं सीमा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अभी दासता के भाव में है और वो खुद की महिमा खुद ही वर्णन कर रहे हैं। और सुबह से उन्होंने क्लास शुरू की थी, हमने पढ़ा था कि सुबह सुबह बच्चे आए थे सारे क्लास के लिए, महाप्रभु तुरंत गंगा स्नान जाते आते और क्लास लेना शुरू करते हैं। तो सुबह से क्लास काफी समय हो गया, दोपहर तक चली और फिर भी अंत होने की कोई सीमा नहीं है। मोहित पढ़ुया सब सुने कमने, द्विरुक्ति करिते कारो न आई से वदने। तो ये सारे जो विद्यार्थी हैं या मोहित हो गए महाप्रभु के मुख से सुनने से मोहित हो गए। तो ऐसा स्पीकर मिलना इस जगत में संभव नहीं है, कोई ऐसा जो वक्ता और वो भी कृष्ण के बारे में बोले। और कृष्ण ही जब अपने बारे में खुद बोलते हैं तो वो कितना स्वीट होगा, बल्कि कृष्ण के बारे में उनका भक्त बोलता है तो वो ज्यादा स्वीट होता है। इसलिए तो शुकदेव गोस्वामी का वर्णन सब जगह किया है, तोते से किया है उनकी तुलना। हाँ, तोता जब आम खाता है तो अधिक मधुर होता है। लेकिन यहाँ जब महाप्रभु बोल रहे थे तो सारे उनके शिष्यों ने सुना और उनको बहुत अधिक आनंद महसूस हुआ और वो सब मोहित हो गए और कोई भी प्रत्युत्तर कर नहीं पाया, मतलब कि आपकी व्याख्या कुछ गलत है। हाँ, ये बोलने की कोई किसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, शक्ति नहीं थी। से सबे कृष्ण रदास जानी हनी छाए, कृष्ण जारे पढ़ाए न से कि अन्य हाय। तो कहते कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो हमारे लिए कह रहे हैं कि जो ये लोग महाप्रभु से शिक्षा ले रहे थे तो ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं है, आप इनको सामान्य मत समझो। ये सारे जो विद्यार्थी हैं वो कृष्ण के निज दास हैं और कृष्ण स्वयं उनको पढ़ा रहे हैं। तो भगवान जिनको पढ़ा रहे हैं उनके वो भक्ति हो सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। कतक्षणे बाह्य प्रकाशिला विश्वंबर, चाहिया सबार मुख लज्जित अंतर। तो जब महाप्रभु अभी पूरा उनके क्लास में उन्होंने कृष्ण भावना के अलावा किसी चीज का वर्णन नहीं किया और वो पूरा किसी और भावावेश में थे तो लेकिन अभी जब वो क्लास खत्म कर ही रहे थे तो उनको लज्जा महसूस होने लगे, वो अपने बाह्य दशा में फिर से आए, नॉर्मल जो भावनाएं हैं, नॉर्मल लाइफ है उसमें वो वापस आ गए उस भावना में। और जब सब बच्चे उन शिष्यों के मुंह को देखने लगे तो इनको लज्जा महसूस हो गई कि कुछ तो गलती की है मैंने अभी क्लास पढ़ाते पढ़ाते। प्रभु बोले धातु सूत्र बाखा ने लुकेन। तो महाप्रभु ने पूछा कि मैंने ये धातु सूत्र की जो व्याख्या की वो कैसी रही, कैसी हुई ये व्याख्या। पढ़ुया सकल बोले सत्य अर्थ जैन। तो अभी इनके पास कुछ उत्तर ही नहीं था, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने सत्य सत्य सुनाया है व्याख्या। जते कबाखान तुम्हें सब सत्य है, सबे जे उद्देश्य पढ़े तारा अर्थ नाय। तो एक मिनट, हाँ, तो वो कहने लगे कि जो भी व्याख्या आपने की है, जय शब्द जय अर्थ तुम्हें करी ला बाखान, कार बापे ताहा करे बारे पारे आन। कि कहते आपने जो व्याख्या की है, इस संसार में कौन बाप होगा जो आपकी व्याख्या को प्रत्युत्तर दे सकता है या उसका खंडन कर सकता है। जते का बाखा न तुम्हें सब सत्य है, सबे से उद्देश्य पड़े तारा अर्थ नाय। तुमने कहा जो कुछ भी आपने कहा है वो सब सत्य है और लेकिन जिस उद्देश्य से हम आपके पास पढ़ने के लिए आए हैं लेकिन उसके अनुसार ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ भक्तों के लिए ठीक है। इस प्रकार से धातु की व्याख्या करना, जैसे जीव गोस्वामी ने हरिनाम व्याकरण लिखा है, संस्कृत किसी को सीखना है तो जो हरिनाम व्याकरण पढ़ाया जाता है, क्योंकि संस्कृत के जो व्याकरण है ये सब पढ़ना में पूरा ड्राई ड्राई है, व्यक्ति सूख जाता है, तो लोग भागते हैं, जैसे वृंदावन में हमारा गोवर्धन वो है, स्कूल है, तो वहाँ तीन तीन साल उनको सब सूत्रों का उच्चारण करना होता है, जैसे हमें श्लोका याद करने होते हैं या किसी चीज के मीनिंग, तो वो संस्कृत सूत्रों को याद करते हैं, रटते रहते हैं। तो लेकिन इतना ड्राई हो जाता है वो भक्तों से जब मिला तो कई तो भाग ही गए। उन्होंने कहा नहीं, एक साल के बाद वो चले गए, क्योंकि कुछ और होता नहीं। तो फिर जीव गोस्वामी ने क्या किया, उन सारे सूत्रों को जो व्याख्या है वो कृष्ण से संबंधित कर दी, हर शब्द को कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो फिर वैष्णव को संस्कृत व्याकरण पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया, सुलभ हो गया। तो ये सब शिष्य कह रहे थे कि हम जिस उद्देश्य से आए थे आपके पास ये संस्कृत व्याकरण और ये सब शिक्षा लेने के लिए, जब आपका ये अभी क्लास सुनाया हमने, इससे लगता है कि हमारा आने का उद्देश्य सफल नहीं होगा, क्योंकि आप व्याख्या तो सही है, हम खंडन भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। प्रभु बोले कह देखी हमारे सकल, वायु वा आमारे करे याचे जेविवल। तो महाप्रभु कहने लगे कि आप मुझे बताओ कि मैं जब पढ़ा रहा था कहीं मुझे वायु जो रोग है जो मेरे शरीर में अस्थिर हुआ है उसने परेशान तो नहीं किया था। सूत्र रूपे कोन वृत्ति करिए बाखान, शिष्य वर्ग भले सबे एक हरि नाम। तो उन शिष्यों ने कहा कि आप जो सूत्र रूप में जो भी टीकाएं कर रहे थे, उनकी व्याख्या कर रहे थे धातुओं की शब्दों की, तो लेकिन सबका उत्तर एक ही दे रहे थे, वो क्या था, हरि नाम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बुझते तुम्हारा व्याख्या के बाछे पात्र, सूत्र वृत्ति टीकाय बाखान कृष्ण मात्र। बुझते तुम्हारा व्याख्या के बाछे पात्र। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो व्याख्या, जो भी सूत्र टीका और व्याकरण आप पढ़ा रहे थे उसमें केवल कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, और इसको समझने के लिए कौन क्वालिफाइड है, ऐसे कहने लगे। इसको समझना बड़ा ही क्वालिफाइड होना होगा आपकी इस टीका को समझने के लिए। भक्ति रश्रवन जे तुम्हारा आसी है, तहाते तुम्हारे कभू नर ज्ञान न है। तो अभी महाप्रभु का गुणगान करने लगे वो शिष्यगण, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था अपनी आंखों से, तो वो अभी बताने लगे कि आपके साथ क्या होता है। तो वो कहने लगे कि जैसे ही भक्ति रस श्रवणे, जब आप भक्ति से संबंधित कोई भी चीज सुन लेते हो तो फिर आपकी क्या दशा होती है वो देखने योग्य है। जैसे हमने पहले सुना था, महाप्रभु ने एक श्लोक सुना था, जब एक आंगन में, एक नवदीप के एक व्यक्ति के आंगन में अपना क्लास ले रहे थे, तो पड़ोसी के घर में एक व्यक्ति भागवतम के दशम स्कंद के उस श्लोक को सुना, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया था, जब यज्ञ पत्नियां जाती है और कृष्ण के सुंदरता को देखती हैं। तो कहते कि आप कोई भी चीज भक्ति से संबंधित श्रवण करते हो तो जो दशा होती है, तो ऐसे महसूस होता है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं है। जब ये देखते हैं हम, केवल श्रवण मात्र से आपने इतना परिवर्तन आ जाता है। प्रभु बोले कौन रूप देख हमारे, पढ़ू या सकले बोले जत चमत्कार है। तो महाप्रभु का भी अच्छा लगने लग रहा था अपने बारे में सुनने के लिए, हाँ, क्योंकि उनका थोड़ा सा गुणगान हुआ ना कि आप इतना अच्छा सुनते हैं, सुनते ही आप में परिवर्तन आता है, और हम में हमारा पूरा ही विपरीत है, सुनने के बाद परिवर्तन नहीं आता। हाँ, तो जो सुनना है ना वो इतना शक्तिशाली है। एक है जो भौतिक चीजें सुनना, वो भी अपना एक स्ट्रांग प्रभाव डालती है, गलत चीज सुनना, और एक सही चीज सुनना वो भी अपना प्रभाव डालती है। तो एक बार छह मेंढक अपनी टूर लेके जा रहे थे किसी जगह पहाड़ों पर, तो रास्ते में एक कुआं आया, और वो तो कई मेंढक जैसे बच्चे होते कुएं में देखने की इच्छा होती कितना गहरा है क्या है, तो सब मेंढक नीचे देख रहे थे कितना गहरा है क्या है, अभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये उनका तीर्थ स्थान था। तो जैसे कुछ मेंढकों ने देखा उनमें से दो नीचे गिर गए, तो अभी इन चार पांच छह थे तो उनमें से दो गए ऊपर, चार रह गए, तो दो नीचे गिरे। तो बेचारे नीचे बिल्कुल ड्राई कुआ था, उसमें कोई पानी नहीं था, और गिरे जोर से थक गए। उनको लगा भी होगा थोड़ा सा, तो ऊपर के सब चिल्लाने लगे, तो कुछ ऊपर के थोड़े से शरारती थे जो चार थे, तो वो ऊपर से क्या कहते थे कि आप लोग अभी ऊपर नहीं आने वाले हैं, आप मरने वाले हैं नीचे, आप ऊपर नहीं आ सकते। बल्कि वो दो मेंढक पूरा प्रयास कर रहे थे, बार बार कूद रहे थे, जंप लगा के बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से कुछ ऐसे थे वो कहते थे नहीं नहीं आप लोग मरने वाले हैं, नीचे रहने वाले, आप नहीं आ सकते। तो बेचारा एक जो था उसने ऐसा उनका ये साउंड सुना, डिस्करेज कर दिया, तो वो कुछ जंप मारे और ऐसा डिस्करेज हो गया कि शरीर छोड़ दिया उसने उसके अंदर। लेकिन दूसरा मेंढक था तो ये सब लोग ऐसे हाथ ये कर रहे थे ना, मरोगे आप, ये करोगे वो कराएगा, तो दूसरे को लगा कि देखो ये मेरे मित्र मुझे कितना बुला रहे हैं उत्साह से, तो उनकी आवाज ये, क्योंकि इतना कुछ नीचे उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि इतना उत्साह से आवाज ये लगा रहे हैं, जैसे आप देखो क्रिकेट मैच होती है तो चिल्लाने वालों से जब चिल्लाते तो जो प्लेयर है उसको जोश आता है, जब बॉक्सिंग होती है तो दो पार्टी के दो लोग जब चिल्लाते हैं साउंड वाइब्रेशन, तो इतना फाइट करते हैं, तेजी से शक्ति आ जाता है। तो वैसे ये मेंढक के साथ ऐसे ही हुआ, उनको लगा कि मेरे मित्र इतने मुझे चिल्ला रहे बुला रहे हैं, इतना जंप मारा कि उस लास्ट की जंप पे वो बाहर ही आ गया। उनके मित्र कहने लगे कैसे तुम आ गए बाहर, वो कहने लगा आप इतना उत्साह से मुझे लाने के लिए आवाज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तो हम तो कह रहे थे कि आप नीचे मर जाते हैं ऊपर क्यों आ रहे हो, कहते कि मैं बहरा हूं इसलिए मुझे सुनाने दिया आपकी आवाज। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक बंदर ने तो इस प्रकार से सुना था, ये मेंढक ने, तो बिल्कुल डिस्करेज हो गया। तो श्रवण आप ये तो डिस्करेज हो सकते हो, आपका स्पिरिट खत्म हो सकता है, या फिर आप उन्नति कर सकते हो। इसलिए ये चीज बहुत मायने रखती है। तो महाप्रभु को भी अच्छा लगा, तो महाप्रभु ने पूछा कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं सुनने से बड़ा चित्र विचित्र हो जाता हूं, तो आप बताओ कि मेरा क्या रूप देखा आपने। तो सब जो विद्यार्थीगण थे उन्होंने कहा कि आप तो चमत्कार ही करते हैं जब आप भक्ति के बारे में सुनते हैं। जे कंप जे अश्रु जे वा पुलक तुमार आमरा तको था कबू नाही देखियार। तो उन्होंने कहा कि जब आप श्रवण करते हो किसी भक्ति से संबंधित चीजों का, तो आपके शरीर में कंप होने लगता है, आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और क्या क्या होता है ये ऐसी चीजें हमने कभी नहीं देखी जो पहली बार आपके शरीर में देख रहे हैं प्रकट होते हुए। काले तुम्हें पुथी जबे चिंता नगरे तखन पढ़िला श्लोक एक विप्रवरे। तो कहने लगे कि कल जब आप पुथी पढ़ रहे थे तो पास में एक विप्र ब्राह्मण पढ़ रहा था श्लोक, क्या नाम था उनका, रत्नगर्भ आचार्य। भागवत श्लोक सुनी हयेला मूर्छित सर्व अंगे नाही प्राण आमरा विस्मित। और जैसे आपने भागवतम का श्लोक सुना तो आप मूर्छित हो गए थे और आपके शरीर में प्राण नहीं था, और हमें आश्चर्य हो गया कि ये टीचर के साथ हमारे क्या हो गया जो अभी अभी हमें लेक्चर दे रहा था। चैतन्य पाया पुना जे कैला क्रंदन गंगा है ना सिया ही लमिलन। कहते कि जब हो गए सुन के तुरंत आप जग गए और फिर रोने लगे, और ऐसे लग रहा था कि आपके आंखों से गंगा जो नदी है वो बह रही है। शेष जेवा कंपासी हई ल तुमार शतजन समर्थना हय धरी बार। और इसके बाद जब आपने रोना शुरू किया और आपने आपके शरीर में इतना कंपन होने लगा कि ये सब शिष्यगण कहने लगे आपको सौ लोग भी यदि पकड़ते तभी भी आपको रोक नहीं पाते, इतनी शक्तिमान आपका जो शरीर है उछल रहा था और कंपित हो रहा था। आपद मस्तक हैला पुल के उन्नति लाला घर मधुलाय व्यापित गौर मूर्ति। कहते हैं कि आपका जो शरीर है चरणों से लेकर मस्तक तक पुलकित हो रहा था या रोमांचित हो रहा था, और आपका जो गौर मूर्ति है, महाप्रभु का एक नाम क्या रखा था, गौरहरि, उनका जो गौरांग या गौरहरि, क्योंकि वो दिखने में ऐसे गोल्डन दिखाई देते थे, तो इसलिए कहते कि आपका जो ये गौर मूर्ति है वो सारा आपकी लार से और धूल से सारा दूषित हो गया था, उसके ऊपर लग गई थी। अपूर्व भाव ये सब देखे जत जान, सबे ही बले न ये पुरुष नारायण। तो जब कई लोगों ने आपकी स्थिति को देखा उस दिन, तो कई लोगों ने कहा कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कौन है? नारायण है। केह बले व्यास शुक नारद प्रहलाद, तासवार समयोग्य ये मत प्रसाद। तो किसी ने कहा कि ये तो व्यास देव है, शुकदेव गोस्वामी है, नारद है, प्रहलाद है, या फिर इनकी कृपा का कोई पात्र है। हाँ, मतलब उनकी कृपा हो गई है इनके ऊपर। सबे मेले धरे लेना करे या शकते क्षण के तुम्हारा सी बाह्य हैलमती। तो फिर लोगों ने आपको पकड़ लिया जोर से, और फिर कुछ समय के बाद आपको बाह्य ज्ञान आ गया, आप नॉर्मल सिचुएशन में आ गए। तो इस प्रकार से आपके साथ क्या क्या होता है जब आप कृष्ण के बारे में सुनते हो। तो महाप्रभु ने जब पूछा तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो भी घटनाएं घटी थी उन सबको निमाई पंडित के सामने रखा। ये सब वृत्तांत तुम्हें किछु ना जान, आर कथा कही तहां चित्त दिया सुन। तो फिर ये सब विद्यार्थी कहने लगे कि ये जो घटनाएं बीत गई थी आप इनके बारे में नहीं जानते थे, और आप ध्यान देकर एक चीज को सुनिए। दीन दश धरी जत दीन दश धरी कर जते का व्याख्यान, सर्वशास्त्र शब्दे कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम। कहते कि अभी 10 दिन हो गए हम आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में आप कृष्ण से संबंधित जो शास्त्र है उनको कोट करते रहते हो, और कृष्ण के नाम और कृष्ण भक्ति को ही स्थापित करते रहते हो। दश दिन धरे आजी पाठ वाद है, कहे ते तुम्हारा सबे बासी बड़ा भय। कई तो उन्होंने कहा कि 10 दिन से हम सुन रहे हैं, और जो चीज हम आपसे सीखने के लिए आए थे, जो चीज हम आपसे पढ़ने के लिए आए थे, ऐसे लग रहा है कि वो चीज खत्म हो गई है, और हमारा अध्ययन ऐसे लग रहा है कि बंद हो गया है। लेकिन हम कैसे आपको बताएं, हम सबको भय लग रहा था कि आपको बताए या नहीं बताऊं। शब्देर आशेष अर्थ तुम्हारा गोचर, कहते कि आप इतने निपुण हो शास्त्रों के ज्ञान में कि एक शब्द के आपको अनंत अर्थ पता है। जैसे आप भागवतम पहले स्कंद का वो पढ़ेंगे, या फिर चैतन्य चरितामृत जो आत्माराम श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द को, चाहे वो आत्मा है तो उसके कम से कम कितने 72 या कितने ऐसे एक शब्द के इतने अर्थ बता दिए। तो इसलिए बच्चे कह रहे कि आपको एक शब्द के अनंत अर्थ पता है। जैसे आत्मा का मतलब मन है, शरीर है, और कई चीजें हैं। तो इस प्रकार से एक एक शब्द के आप इतने अर्थ बता सकते हो। तो फिर जेबा खाना हसी तहा के दे बेउत्तर, तो जो आप हंसते हुए कहते हो तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो इसका उत्तर दे सकता है। प्रभु बोले दश दिन पाठ बाद जाए, तबे तो हमारे सबे कहे तेजुआ। तो फिर ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका जो 10 दिन से जो अध्ययन है वो व्यर्थ जा रहा है, तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं मुझे बताया? मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों ने मुझे तुरंत बताना चाहिए। 10 दिन तक क्यों वेट किया? देखो महाप्रभु एक आइडियल टीचर है, वो समझते कि शायद मेरी कमी है ये, तो आप लोग मुझे बताते, इतने विनम्र थे। ये नहीं कि मेरा जो टीचर है वो मुझे बताता गुरु, आप लोग क्यों बोल रहे हो, आप तो छोटे हो। महाप्रभु स्वयं उनको कह रहे कि आप बताओ। पढ़ू या सकल बले बाखा न उचित, सत्य कृष्ण सकल शास्त्रे समेहित। तो फिर विद्यार्थियों ने कहा कि हे पंडित, आपने जो व्याख्या की थी शास्त्रों की वो उचित है, क्योंकि सचमुच सारे शास्त्रों का अध्ययन करने का मर्म यही है कि कृष्ण ही सत्य है, या कृष्ण ही सबका गोल है, अभिप्राय है सारे शास्त्रों का अध्ययन करने का। अध्ययन ये से सकल शास्त्र सार, कि अध्ययन क्या है सारे शास्त्रों का, यही तो सार है कि कृष्ण के नामों का उच्चारण करना और कृष्ण के प्रति अपने हृदय में भक्ति का विकास करना। तबे जेना लई दोष अमा सभाकार, लेकिन हम दोषी हैं, क्योंकि हम कृष्ण के भक्ति को नहीं ले रहे हैं और कृष्ण के नामों को नहीं ले रहे हैं। मूले जे बाखान तुम्हें ज्ञातव्य से ही से तहां तेना लय चित्ते निज कर्म दोषे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी व्याख्या की है वो जानने योग्य है, और लेकिन ये दोष आपका नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि हम कृष्ण को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण के नामों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ये हमारे कर्मों का दोष है। इस प्रकार से वो सब छात्र कह रहे थे। तो आगे वो कहते हैं, पढ़ो यार वाक्य तुष्ट है ला ठाकुर कहे ते लागिला कृपा करे या प्रचुर। तो फिर अभी सब उनसे उन्होंने सुना और फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा करके सबके ऊपर दृष्टिपात डाला और वो अभी बोलना शुरू किए। अभी महाप्रभु पूरा परिवर्तन ला देते हैं अपना, अभी जो जीवन शैली है, अभी वो कहते पढ़ाई बहुत हो गई, अभी क्या करना है, भक्तों का संग करना है, और भक्तों के संग में
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
इससे आगे चैतन्य भागवत कुछ समय आप देखेंगे कि पूरा एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, क्योंकि अभी तक वो विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे, अभी वो कृष्ण रस का आस्वादन करेंगे अकेले नहीं, कैसे, भक्तों के संग में, कृष्ण कथा कृष्ण नाम संकीर्तन। तो अभी वो सब बच्चों से कहेंगे, प्रभु बोले भाई सब कहिला सुसत्य हमारा ये सब कथा अन्यत्र अकथ्य। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों आप जो कहते हैं वो सही हैं, लेकिन ये जो मेरी बातें आपने देखी आपने सुनी तो ये प्लीज किसी को मत बताना, हाँ अकथ्य है, मतलब कहने के योग्य नहीं है, किसी को बोलने के योग्य नहीं है। वर्ण अभी कहते हैं कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बाजाय। तो वो कहते हैं कि मैं तो जो कृष्ण वर्ण का एक शिशु है, बालक है, कौन है, कृष्ण ही है, श्यामल, कृष्ण वर्ण श्यामल, कृष्ण वर्ण के जो श्यामल कलर के जो बालक है जिनका नाम कृष्ण है, और वो क्या करते हैं, मुरली बजाए, मुरली बजाते हैं, सबे देखी ताई बहा बलि सर्वताय। तो इसलिए उनको जब मैं देखता हूं तो उनकी ही बातें मैं करते रहता हूं हर समय। जत सुनि श्रवने सकल कृष्ण नाम सकल भुवन देखी गोविंदे रधाम। और मैं जब भी कुछ सुनता हूं तो मैं कृष्ण नाम ही सुनाई देता है। हाँ देखो कितना अद्भुत है, कृष्ण नाम ही सुनाई देता था लॉर्ड चैतन्य को। और वो कहते सकल भुवन देखी, और मैं जहां भी देखता हूं मुझे गोविंद से संबंधित चीजें देखती थी दिखाई देती थी, या गोविंद ही दिखाई देते हैं। तो मा सब स्थाने मोर यही परिहार आज है ते आर पाठ नाही के अमार। तो कहते हैं कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये प्रतिज्ञा है मेरे कि आज से मैं आप किसी को पढ़ाऊंगा नहीं, आज से पढ़ाई बंद। तो मा सब आकार जार स्थाने चित्तलय तार स्थाने पढ़ा मैं दिलाऊ निर्भय। तो महाप्रभु ने कहा कि आपका मन जिसमें लगता है, जिस टीचर में लगता है, उसके पास जाओ और उससे सीखो। हाँ तो कहते कि अभी मैंने आपको अभय दान दिया है, अभी भयभीत मत हो, हाँ कि मुझसे ही पढ़ना है, मैं अभी किसी को नहीं पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, आप जाओ जिसके पास पढ़ना है, जो टीचर आपके हृदय में है उनके पास जाओ और उनसे ही पढ़ो। कृष्ण बिनु आर वाक्य नास्पुरे अमार सत्यामी कहिला हो चित्त अपनार। तो अपने चित्त की बात बोलते हैं, क्योंकि मुझे समझो कि मेरे मुझसे कृष्ण के अलावा कोई चीज पूरित नहीं होती है, ये मेरा दोष नहीं है। हाँ ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि मैं कृष्ण के अलावा मेरे मुंह में कोई और वाक्य पूरित नहीं होता है, और मैं ये सही सही कह रहा हूँ आपको। यही बोला महाप्रभु सबारे कहिया दिले न पुथिते डोर अश्रुयुक्त है या। तो महाप्रभु ने यह बात बोल के अपना जो पुथी है उसको ग्रंथ को बंद कर दिया, और उस समय कोई पुस्तक होती थी तो उसको ना रस्सी होती थी तो बांधा जाता था, तो महाप्रभु ने कि महाप्रभु के आंखों से आंसू आ रहे थे। शिष्य गण भले न करे या नमस्कार, हमारा करेला या संकल्प तुम्हार। तो फिर अभी सारे शिष्यगण बोलने लगे, उन्होंने नमस्कार किया और वो इतने दुखी हो गए। अब देखो इतने अद्भुत शिक्षक से हमें सीखने को मिलता है और उनसे हमारा पढ़ाई बंद हो जाए तो कितना दुख होगा। तो कहने लगे कि हमने तो संकल्प कर लिया है। क्या संकल्प कर लिया है? तुम्हारा स्थाने जे पढ़े लाओ आमी सब आरस्ताने करीब की ग्रंथ अनुभव। तो हमने जो आपके पास सीखा है, आपके पास पढ़ा है, तो दूसरी जगह जाकर हम नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, ये योग्य नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। गुरु रविच्छेद दुखे सर्व शिष्य गण कहते लागिला सबे करे अक्रंदन। तो अभी महाप्रभु को छोड़ने की बारी आ गई थी उनको। हाँ, वो दूर होने वाले थे अपने गुरु से, विच्छेद। तो वो सारे जो शिष्यगण हैं निमाई पंडित के विद्यार्थी, सारे रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि आज से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे मुख से कृष्ण के अलावा कोई चीज पूरित नहीं होती है। तुम्हारा मुख है तेज सुनि लो व्याख्यान, जन्मे जन्मे हृदय रहु कसे ध्यान। तो फिर वो कहने लगे, आपके मुख से जो भी हमने सुना है, तो जो भी चीज हम सीखे हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि वो हमारे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। कारस्ताने गिया रिवा पड़े बाओ से भल तुम है ते जत जाने लाओ। तो कहने लगे कि हम और किसी स्थान में जाकर क्या पढ़ेंगे। हा? जो भी आपसे पढ़ा है, जो भी आपसे सीखा है, वही सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से इतना गहन अटैचमेंट उन विद्यार्थियों को निमाई पंडित से था और निमाई पंडित को भी उनसे अटैचमेंट था। हा? एत बलि प्रभु रे करिया हाथ जोड़, पुस्तके दिले न सब शिष्य गण डोर। तो इतना कहकर उन सब शिष्यों ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने पुस्तकों को रस्सी से बांधने लगे। हरि बलि शिष्य गण करे लेना ध्वनि, सभा को ले करिया प्राण देना द्विज मने। तो सारे बच्चों ने जोर से बोलने लगे, हरे 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 हरे। तो ऐसे बोलने लगे और फिर महाप्रभु ने सबको बोले किया, सारे विद्यार्थियों का ऐसे अपने इसमें लिया और वो विद्यार्थी भी रो रहे थे और निमाई पंडित भी रो रहे थे। शिष्य गण क्रंदन करे न अधो मुखे, डूबी लेना शिष्य गण परानंद सुखे। तो सारे शिष्य अपना मुंह नीचे करके रो रहे थे और उनको इतना आनंद अनुभव हो रहा था महाप्रभु के उनको गले में उनको मिलके, और वो भी रो रहे हैं, शिष्य भी रो रहे हैं। तो बड़ा क्लोज रिलेशन उनको महसूस हो रहा था। रुद्ध कंठ है लेना सर्व शिष्य गान, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सचिनंदन। तो रोते रोते शिष्यों का कंठ चौकफ हो गया और महाप्रभु जो सची माता के पुत्र हैं उन सबको आशीर्वाद देने लगे। तो महाप्रभु ने क्या आशीर्वाद दिया? दिवोसे को आमी जदि हय कृष्ण दास, कहते हैं अबे सिद्ध हो तो मां सबार अभिलाष। कहते हैं कि यदि मैं एक दिन के लिए भी कृष्णदास बना हूं, तो आपकी जितनी भी अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी। मतलब इससे क्या है कि देखो, हम पूरे दिन इतनी सेवा करते हैं लेकिन एक घंटे के लिए भी कृष्णदास नहीं बनते हैं। हाँ, मतलब उस चेतना में सेवा नहीं होती है, कृष्ण चेतना में। तो महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि एक दिन भी मैं कृष्णदास होता, लेकिन हम सब टाइटल लगा के बैठे हैं, मिस्टर दास, मिस्टर दासी, मिस्टर ये, सब दास दास, लेकिन हम एक दिन के लिए भी कृष्णदास नहीं है। हर घंटे के लिए हम किसी और के दास हैं, या जब फेस्ट होती है तो मैं अनुभव करता हूँ जीवा का दास हो जाते हैं, या फिर जब सोने को मिले फ्री, कोई रूल्स नहीं है, कुछ कोई हमारे पीछे डंडा लेके नहीं है, तो हम निद्रा देवी के दास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन भी नहीं आता जीवन में कि हम कृष्ण के दास सही में हो गए हैं पूरे दिन के लिए। तो हमारा सकल लह कृष्ण रशरण, कृष्ण नामे पूर्ण हो सबार वदन। उन्होंने कहा अभी ये आखिरी उनका मीटिंग है, तो निमाय पंडित कहते हैं कि आप सब लोग कृष्ण की शरण ग्रहण करो और आपका मुख किस चीज से भर जाना चाहिए, कृष्ण नाम से। तोमा सबार वदने, आपका जो मुंह है वो कृष्ण नाम से भर जाना चाहिए। निरवधि श्रवणे सुनह कृष्ण नाम, कृष्ण हो तोमा सबा कर धन प्राण। तो निरवधि हर समय कृष्ण नाम को सुनो और आपके जो कृष्ण है वो आप सबके प्राण हो जाए, आपके जीवन के धन हो जाए। हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में कृष्ण बन जाए। जय पड़िला से ये भाल आर कार्य नाय, सबे मेले कृष्ण बले बाओ एकठाय। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपने पढ़ा है वो सब ठीक है और उसका कोई और प्रयोजन नहीं है और अधिक पढ़ने का। हाँ, तो आप सब क्या करो, सबे मेले जितना पढ़ा है उतना ठीक है, उतनी पढ़ाई बहुत है आपके कल्याण के लिए, लेकिन सबे मेले कृष्ण बलि बाहु एकठाय, सब मिलो और कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण के नामों का कीर्तन किया करो। कृष्णेर कृपाय शास्त्र कुरु का सबार, तो कहते आप इस प्रकार से करोगे, सब मिलके कृष्ण का कीर्तन करोगे तो आपके हृदय में जो शास्त्र है कृष्ण की कृपा से स्फुरित हो जाएगा। हाँ, जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं, हाँ दिव्य ज्ञान, हाँ, तो कहते कि जिसकी गुरु में कृष्ण में जितनी फैथ है और उसके अनुसार गुरु में भी उतना ही श्रद्धा है, तो स्वाभाविक रूप से शास्त्र भी उसको स्फुरित हो जाएगा। कृष्णेर कृपाय शास्त्र गुरु का सवार, तुम्हें सब जन्म जन्म बांधव अमार। उन्होंने कहा कृष्ण की कृपा हो जाएगी आप सबके ऊपर, कृष्ण की कृपा से सारे शास्त्रों की स्फूर्ति होगी और आप सब मेरे जन्म जन्मों के बांधव हो। मतलब ये लोग कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं है, वो भगवान नित्य संगी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करिमाने। तो गौरांग महाप्रभु के भक्तों को बाहरी रूप से मत देखो, हा? कि वो महाप्रभु के पर्सनल संगी है, नित्य सेवक है। प्रभुर अमृत वाक्य सुने शिष्यगान, परम आनंद मन हय लतक्षान। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उन विद्यार्थियों ने चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य को सुना और सबको बहुत आनंद महसूस हुआ। से सब शिष्य रे पाय मोर नमस्कार, चैतन्य शिष्य स्वे हिल भाग्यजार। तो कहते हैं कि ऐसे इन विद्यार्थियों के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर। कि इतना उनका भाग्य था कि चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य बने हैं। से सब कृष्ण रदास जानी है निश्चय, कृष्ण जारे पढ़ाए न से कि अन्य है। तो कहते हैं कि आप जानो कि वो कृष्ण के सेवक है, कृष्ण के दास है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण जिनको पढ़ा रहे हैं वो कृष्ण के सेवकों के अलावा कोई और हो सकता है। तो इस बात को वो स्थापित करते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि वो जो सारे बालक है वो कृष्ण के सेवक हैं। जय विद्या विलास देखी लेना जय जय जान, तांदे रो देखी ले है बंद विमोचन। तो फिर वो कहते हैं कि जिन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु की लीला को देखा है, उनके दासों के साथ जब वो महाप्रभु शिक्षा देते हैं, तो वो लोगों का केवल ये दर्शन मात्र से सारे जो बंधन है जीवन के वो खत्म हो जाएंगे। हेलो पापिस्टु जन्म ना हेल तखने, हेला वो वंचित से सुख दर्शन। देखो वृंदावन दास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के इतने क्लोज संगी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हेलो पापिस्ट, मैं कौन हूँ, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, क्योंकि उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ जिस समय महाप्रभु इस जगत में अपने दिव्य लीला करते थे और मैं वंचित रह गया। हेला वो वंचित से सुख दर्शन, मैं वंचित रह गया महाप्रभु के इस दर्शन से। तथापि ये कृपा कर महाशय, से विद्या विलास मोरा रहु करुदय। तो इस प्रकार से कहते कि हे महाशय, हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे ऊपर इस प्रकार से कृपा कीजिए कि आपका ये जो विद्या विलास है, आपकी ये जो लीलाएं हैं, ये मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए रहें। तो ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। तथापि हय ये कृपा कर महाशय लाउडली तथापि हय ये कृपा कर महाशय विद्या विलास मोर रहु करुदाय। तो मतलब वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे चैतन्य देव, आपकी ये जो दिव्य लीलाएं हैं मेरे हृदय में हमेशा के लिए रहे, ताकि मैं उनको सुनता रहूं और उनका चरवन करूं। तो जैसे सुनते हैं तो उसके बाद चबाना चाहिए हमें। गाय जब खा कई सारा घास खाती है, और जब आप देखा जब वो बैठती है तो उसका मुंह हमेशा चलता है, तो सारा घास को वो पूरा छोटा छोटा चबाती है। तो उसी प्रकार से यदि हम इस महाप्रभु की लीलाओं को अच्छी तरह से सुनेंगे और कान से हमारे हृदय में वो लीलाएं जाएंगी, तो फिर हमें स्मरण होगा उन भगवान की लीलाओं का, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा हमें बाकी चीजों का स्मरण होगा जो इस भौतिक जगत में बाकी भौतिक लोग कर रहे हैं, इसने ये किया उसने वो किया, ये सब दिव्य लीलाएं हमारे दिमाग में रहेगी, लेकिन महाप्रभु की महादिव्य लीला नहीं रहेगी। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए? प्रार्थना करनी होगी कि हे कृष्ण, आप मुझे कृपा करो, मुझे ये स्मरण शक्ति दो, मेरे हृदय में आपकी ये लीलाएं रहें, ताकि मैं उनका स्मरण करते रहूं। पढ़ाई ला नवद्वीपे वैकुंठेर राय अद्यापि ह चिन्ना छे सर्व नदियाय। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो वैकुंठ के नाथ है कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने नवद्वीप में रह के सारे विद्यार्थियों को शिक्षा दी, और आज भी वो कहते हैं नवद्वीप में वो स्थान है, ये चिन्ह है जहाँ महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की है। चैतन्य लीला आदि अवधि न है आविर्भाव तिरोभाव यही वेदे कह। कहते कि चैतन्य चंद्र की जो लीलाएं हैं उनकी ना शुरुआत है ना उनका अंत है, ऐसे नहीं कि महाप्रभु की लीलाएं खत्म हो जाएगी। कहते कि वेद वेद केवल इस शब्द को यूज करते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव, जैसे हम भगवान के लिए यूज करते हैं, भगवान का आविर्भाव है, और तिरोधान भगवान इस जगत से प्रयाण करते हैं, महान भक्तों के लिए हम कहते हैं। तो जो भगवान सूर्य के समान है, ऐसे नहीं कि सूर्य आज रात को मर गया दिख ही नहीं रहा है, सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, वैसे ही महाप्रभु की लीलाएं हैं। यही मत परिपूर्ण विद्या रविलास संकीर्तन आरंभे रहैल प्रकाश। तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी यहाँ तक हमने जो महाप्रभु के बारे में सुना, तो उनका जो ये पढ़ाई की लीलाएं हैं, पढ़ने की और पढ़ाने की, ये यहाँ परिपूर्ण हो जाती है, और इससे आगे हरिनाम संकीर्तन की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की नवदीप में प्रकाशित होती है। चतुर्दिके अश्रु कंठे कांदे शिष्यगण सदय हैया प्रभु बले न वचन। तो जो इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे उन बच्चों विद्यार्थियों को कहा, तो सारे विद्यार्थी रोने लगे महाप्रभु के राउंड किया सारी ओर से, और फिर महाप्रभु एक उनको विशेष उपदेश देते हैं, और वो क्या है? पढ़ी लाओ सुनी लाओ जत दिन धरे कृष्ण र कीर्तन कर परिपूर्ण करे। तो महाप्रभु ने कहा, हे छात्रों, इतने दिन तक जो आपने पढ़ा है या पढ़ाना है, आप सब लोग क्या करो, जी भर के कीर्तन करो कृष्ण के नामों का। शिष्यगण बले न के मन संकीर्तन। तो बच्चों ने पूछा कि तो हर समय आपको हमें कहते कि कीर्तन करो कृष्ण नाम का, ये करो वो करो, तो फिर क्या है कृष्ण का संकीर्तन क्या है? आपने सिखाए न प्रभु श्री सचिनंदन। तो महाप्रभु तब स्वयं ही उनका अभी संकीर्तन सिखाते हैं। तो वो कहते हैं हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम गोपाल गोविंद राम हरिहराय नम कृष्ण गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जैसे उन बच्चों ने पूछा कि क्या कीर्तन करना चाहिए, तो महाप्रभु ने ये लाइन बोली, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो कृष्ण के इन दिव्य नामों का कीर्तन करो। दिशा देखाया प्रभु हाते ताले दिया आपने कीर्तन करे शिष्य गण लया। तो महाप्रभु केवल गा नहीं रहे थे, स्वयं ही ताली बजा रहे थे और इस श्लोक को गा रहे थे, हरि हराय नमः, और सारे शिष्यगण उनके साथ गा रहे थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी ये जो पढ़ने की और पढ़ाने की जो लीला है, जिसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि विद्या रूपी जो रस है, विद्या रस, विद्या का अर्जन करने में जो आनंद आता है, उस रस का महाप्रभु ने नवदीप में आस्वादन किया, और फिर उन्होंने अभी उस रस का आस्वादन परिपूर्ण किया, और उन्होंने अभी उस पढ़ाई और पढ़ाने को रोक दिया और आगे हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, और उन बच्चों को कहा कि आप जब जाओगे तो परिपूर्ण होकर बोलो, मुंह में कृष्ण नाम लो। तो उन सब विद्यार्थियों ने पूछा कि हमें क्या कैसे कीर्तन करना चाहिए, तो महाप्रभु ने कहा ताली बजाकर और भगवान के उन दिव्य नामों का कीर्तन करो, और वो नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री चैतन्य भागवत के वृंदावन दास ठाकुर के जय गौर प्रेमानंदे।